तो इस तरह है, तो तूने अपने पुण्य कर्म और सुयस सभी मिट्टी में मिला दिए और तेरे भोग का साधन जो राज था वह भी नष्ट हो गया है, फिर तू किस लिए जी रहा है। एक माता कह रही है अपने पुत्र से, है ना, फिर बोलती है दान तपस्या सत्य विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का यश नहीं गाया जाता वो तो अपनी माता का मल है। सच्चा पुरुष तो वही है जो अपनी विद्या तपस्या ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति नहीं करनी चाहिए, उससे कीर्ति नष्ट हो जाएगी, दुख मिलेगा, एक कायरों के लिए होता है भिक्षावृत्ति। मालूम होता है तुझमें जरा भी स्वाभिमान नहीं है, उत्साह नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है, कोई भी काम नहीं, ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न ना करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज और धन की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है, वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह है, किसी प्रकार अपना पेट पालता है, उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि सूरवीर तेजस्वी बलि और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीर गति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण को और तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होना चाहिए। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। और क्या कह रही है, तू युवा है तथा विद्या कुल और रूप से संपन्न है, यदि तुझ जैसा यशस्वी पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को ना उठाए तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूं। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उनके पीछे पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी कि शत्रुओं का तुम गुलाम बन गया। इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पीछे लगू रहा हो। हमारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ। माता कह रही है तुझे शत्रु का सेवक होना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे छात्र धर्म का ज्ञान है वो भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता। वह वीर तो मतवाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है। जो वीर पुरुष है वो ब्राह्मण के सामने झुकता है क्योंकि उसमें धर्म की रक्षा करना उसको, लेकिन और किसी के सामने झुकता नहीं वीर पुरुष। अच्छा अब पुत्र क्या बोला, पुत्र बोला मां तुम वीरों किसी बुद्धि वाली किंतु बड़ी ही निष्ठुर और क्रोध करने वाली हो। पुत्र कह रहा है तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का बना है, अहो क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। कोई माता ऐसा कहती है अपने पुत्र को, तुम ऐसे मुझे बोल रही हो, मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं। क्या लड़का कह रहा है मैं तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी तो पृथ्वी गहने भोग और जीवन में भी तुम्हें क्या सुख होगा, फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में मारा जाऊंगा। तो माता ने कहा, क्या कहा, इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम ना दिखलाया तो अपने शरीर या शत्रु के प्रति और अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम ना लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है उस समय यदि मैं तुझसे कुछ ना कहूं तो लोग मेरे प्रेम को क्या कहेंगे, गधी का प्रेम है। एक गधी भी तो अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो मेरा जो प्रेम है तेरे प्रति वो कैसा प्रेम कहलाएगा, गधी का प्रेम। हाँ, और उसे सामर्थ्यहीन बताएंगे। अतः तू सत्पुरुषों से निंदित और मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे। जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष शत्रु पर चढ़ाई ना करने वाले दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र को पाकर भी सुख मानता है उसका संतान पाना व्यर्थ है। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। क्षत्रियों की रचना इसीलिए हुई है। युद्ध में विजय या मृत्यु प्राप्त करने से क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त करता है। शत्रुओं को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है वह तो इंद्र भवन में भी या स्वर्ग में भी नहीं है वो सुख। तो पुत्र बोला, आप पुत्र क्या बोला, माताजी ये ठीक है किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। क्या समझे? कहता आपने ठीक कहा, अपने पुत्र के लिए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। उस पर बिल्कुल चुप होकर के दया दृष्टि रखनी चाहिए अपने पुत्र के ऊपर। पुत्र को तो आप ऐसा मत बोलो। तो माता ने कहा, बेटा जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य बता रही हूं, ठीक है ना? तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है तो मैं तुझे तेरा कर्तव्य बता रही हूं। कितना अच्छा जवाब है। जब तू सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती हूं। कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट होगी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा सेना मंत्री भी डरकर अपना विचार बदल देते हैं। उनमें से कोई शत्रुओं से मिल जाते हैं अगर राजा को देखते हैं कि भयभीत है, कोई छोड़कर चले जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं। अच्छा, तो वो लड़का जो है ना राजा था, संजय था, बड़े छोटे मन का था किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा ये राज्य शत्रु डूब जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बार बार तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसी से बीच बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। लड़का कह रहा है, तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और विजय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं सहित चढ़ाई करता हूं। अब कुंती ने कहा, श्री कृष्ण, कुंती ने कृष्ण को ये कथा सुनाई कि कृष्ण ये कथा सुनाए किसको, पांडवों को। अब कुंती कहते हैं, श्री कृष्ण, माता के वचन बाणों से विद कर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता की आज्ञानुसार सब काम किए। तो ये कथा बड़ी उत्साहवर्धक है, तेज बढ़ाने वाली है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो उस समय मंत्री उसे ये प्रसंग सुनाए। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि छत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोख से विद्यासुर, तपासुर, दानसुर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा सूर वीर पुत्र उत्पन्न होता है। इस कथा को सुनने का ये फल है। फिर कुंती देवी कहते हैं कृष्ण से, केशव तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे ये आकाशवाणी हुई थी। अर्जुन का जब जन्म हुआ उसके पहले आकाशवाणी हुई, कुंती ने आकाशवाणी सुनी। क्या? कुंती, तेरा ये पुत्र इंद्र के समान होगा। ये भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। ये सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से ये सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक राज्य को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के तहत 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कौन? अर्जुन। अब कुंती देवी कहती हैं, कृष्ण मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा है ही होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। फिर कुंती कृष्ण से कहती हैं द्रौपदी के लिए संदेश। द्रौपदी से कहना कि बेटी तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्म का बर्ताव किया है, ये तेरे योग्य ही है। अब कुंती देवी संदेश देती नकुल सहदेव के लिए, तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों के भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। फिर कुंती महारानी कृष्ण से कहती है, क्या कृष्ण मुझे राज जाने का दुख नहीं है, राज चला गया इसका दुख नहीं है, जुए में हारने का दुख नहीं है, या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है। तो पुत्रों को वनवास होने का भी दुख नहीं है, किंतु दुख किस बात का है? मेरी युवती पुत्र वधू ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे, दुर्योधन के कठोर शब्द जो सुने थे, वे मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं, इनका बड़ा दुख हो रहा है मुझे। और ये दुर्योधन के वचन भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे। दुर्योधन ने क्या कहा था कि तू अब दासी बन गई है ना, द्रौपदी को अपनी जंघा दिखलाई और नग्न करने का आदेश दिया। तो कुंती महारानी कहती कि ये मुझे जो दुख है, इस बात का जो दुख है, इतना दुख और बात का नहीं कि जुए में हार गए और जो है वनवास हुआ, इस बात का दुख नहीं, इस बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। तुम उन्हें उनकी याद दिला देना। कुंती महारानी कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण याद दिलाएं अर्जुन और भीमसेन को कि याद करो दुर्योधन ने जो वचन बोले थे द्रौपदी को, उनको याद करो, याद दिला देना, फिर द्रौपदी पांडव और उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना। कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण तुम जाओ मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने जो संदेश दिया था भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा संदेश सुना दिया। अब यहां पर अर्जुन को भगवान कौंती कह करके क्या कह रहे हैं कि तुम अगर कुंती के पुत्र हो तो कुंती के संदेश को याद करो, कुंती के आदेश को याद करो, है ना। तस्मादुत्तिष्ठ कौंती युद्धाय कृपनिश्चय, अगर कुंती की बातें अगर तुम्हें याद आ जाए तो फिर क्या करो, तुरंत खड़े हो जाओ युद्ध के लिए निश्चित करके, है ना। इस प्रकार से जीना ठीक नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है, जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया है, इसको सहन करके क्षत्रिय का जीवन धिक्कार है, है ना। आप किसी का कोई प्रश्न है?
हाँ, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तो इस श्लोक में भगवान क्षत्रिय के लिए निश्चित रूप से युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन के जो विचार हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, वे कैसे हैं? कहाँ तक ये बात ठीक है या ठीक नहीं है कि युद्ध नहीं करना चाहिए? अर्जुन ने कुल की रक्षा का भी विचार किया, अपना वंश नष्ट ना हो, तो सभी लोग सोचते हैं कि अपना वंश अधिक से अधिक समृद्ध हो, फूले फले, तो अर्जुन के इन विचारों में क्या त्रुटि है?
अर्जुन की जो त्याग की भावना है कौरवों के प्रति है, तो वे तो बड़े महान विचार है अर्जुन के, है ना। तो भगवान ने इन महान विचारों का समर्थन क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? धन्यवाद। राधा रमन प्रभु बता रहे हैं कि भगवान ने बताया क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है कि वो भीख मांगे, है ना, क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है कि वो खेती करके अपना जीवन बिताए, है ना। क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है कि वो किसी से दया की याचना करे कि मेरे ऊपर दया करो, है ना, उचित नहीं है ये। जहां कोई व्यक्ति ललकारे तो फिर उसको क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं। और कुंती महारानी ने यह भी बताया कि प्रजापति ने क्षत्रियों को इसीलिए बनाया है कि वे युद्ध करें और विजय प्राप्त करें। महाराज मुचकुंद का भी जो ना उदाहरण दिया कुंती महारानी ने, क्या कबीर महाराज मुचकुंद को पूरी पृथ्वी दान दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, बोले मैं ऐसे दान पर नहीं लूंगा ये, ना मैं युद्ध करूंगा और आपसे छीन करके लूंगा, है कि नहीं। तो यहां जो है ना, और जब दुर्योधन कह ही रहा है कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं प्राप्त होने वाली है, तो यहां पर फिर क्या करना है, निश्चित रूप से युद्ध करना है कि नहीं, निश्चित रूप से। अब इसमें जो भगवान ने कहा है कि मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे है? और अगर जीतोगे तो पृथ्वी भोगोगे, है ना। तो ये जो बात भगवान कह रहे हैं तो इसके पहले भगवान ने शिक्षा दे दी अच्छी प्रकार से, क्या कि देही अबद्ध है, शरीर के अंदर जो जीव है अबद्ध है, वो नहीं मर सकता कभी, इसलिए इसकी चिंता मत करना, है ना। अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मैं कभी मर नहीं सकता हूं, है ना। तो भगवद गीता का एक जो है जो शिक्षा है भगवान अच्छी प्रकार से समझा चुके, तब दूसरी शिक्षा दे रहे हैं। भगवद गीता में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है, सिस्टमेटिक नॉलेज, भगवद गीता बहुत जो है ना सिस्टमेटिक क्रमबद्ध है ना। भगवान अच्छी प्रकार से इस बात को जब स्थापित कर दिया, देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम् अर्हसि,
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम् अर्हसि। न तो अपने लिए शोक करने की जरूरत है, ना किसी प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत है, क्योंकि अबद्ध है देह, है ना। तो देह त्याग करके अपने कर्म के अनुसार दूसरा देह प्राप्त करता है देह, और तुम जो है अगर देह त्याग करोगे इस युद्ध में तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो स्वर्ग तो कम से कम है, आगे तो भगवान और भी शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग भी क्या है, कुछ भी नहीं है। ते पुण्यम आसाद सुरेंद्र लोकम अश्वनि दिव्यान दिव्यदेव लोकान, जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं तो उनका क्या होता है,
तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम मनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। हाँ, स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य क्षीण करके गिरते हैं,
गिरते हैं इस मनुष्य लोक में। तो एवं त्रयी धर्मम मनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते, तो ये अच्छा थोड़ी है, वेदों में जो कहे गए अनुष्ठान है उनको करने से स्वर्ग जाते हैं और फिर पुण्य क्षीण होकर के फिर से गिरते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना। तो भगवान स्वर्ग की प्राप्ति को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्यों, क्योंकि अभी शुरुआत है। भगवदगीता की पहली शिक्षा देने के बाद फिर दूसरी शिक्षा भगवान की है। पहली शिक्षा क्या है भगवद गीता की, भगवद गीता की पहली शिक्षा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा अवध्य है, नित्यम अवध्य हो जाए, है ना। देहे सर्वस्य भारत, सबके देह में, किसी का भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा अवध्य ना हो, आत्मा मरती हो, कोई भी ऐसा शरीर नहीं है, है? तो फिर विचार उठता है कि अब जो ना जब आत्मा अवध है, मरता नहीं है, तो फिर विचार उठता है कि अगर मरता नहीं है तो किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तो मरने के बाद मुझे कौन सा शरीर प्राप्त करना है? हाँ? कुछ अच्छा ही शरीर प्राप्त होना चाहिए मुझे, ये तो विचार करना चाहिए। सबसे अच्छा शरीर तो क्या है? आध्यात्मिक शरीर, भगवान की सेवा है ना। लेकिन अगर वो ना मिले तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो हो, है कि नहीं? स्वर्ग की प्राप्ति से भी कुछ तो लाभ माना जाएगा ना? तो इस तरह से भगवान जो है बताते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं पाना चाहता है, भगवान के धाम में जाना चाहता है, तो युद्ध में मर करके वो भगवान के धाम में जाएगा अगर उसके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है। हाँ? जैसे वृत्रासुर युद्ध में मारे गए, तो जब वृत्रासुर युद्ध में मारे गए तो वैकुंठ गए, क्यों? उनकी इच्छा नहीं थी भोगों को भोगने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोगों को भोगना चाहता है तो युद्ध में मर करके वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है युद्ध में मरता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। हाँ? तो वृत्रासुर का ऐसा था ना? वो इंद्र को प्रोत्साहन देते हैं कि तुम मुझे मारो, क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी जाना है भगवान के धाम वैकुंठ में। विरह, वृत्रासुर बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे कि वैकुंठ में जाना चाहते हैं, इसलिए इंद्र से कहते हैं कि तुम मारो मुझे, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तुम मुझे मारो। इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। जब वृत्रासुर ने इंद्र ने जो है गदा मारी वृत्रासुर को, तो वृत्रासुर ने हाथ से पकड़ लिया वो गदा और इंद्र के हाथी को मार दी। तो इंद्र का हाथी जो ना 18 कदम पीछे हट करके और गिर पड़ा, और इंद्र भी हाथी से गिर गए और उनके हाथ से वज्र छूट गया। अब इंद्र वज्र नहीं उठा रहे हैं लज्जा के कारण, और ये भी उनको लगा कि जैसे गदा मारी और वो गदा बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये वज्र भी बेकार हो सकता है। तो वृत्रासुर कहते हैं नहीं नहीं, वज्र को उठाओ, वज्र ऐसे बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान की शक्ति है इस वज्र में। वृत्रासुर कह रहे हैं देखो इंद्र लज्जा के कारण और संदेह के कारण वज्र नहीं उठा रहे, और वृत्रासुर कहते हैं कि नहीं संदेह मत करो, और तुम्हें लज्जा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध में कोई ना कोई तो हारता है, कोई ना कोई जीतता है, तो लज्जा करने की जरूरत नहीं तुमको। इस तरह से भगवान वृत्रासुर ने इंद्र को प्रोत्साहित किया युद्ध करने के लिए, और इंद्र के वज्र के द्वारा वो मारे गए और भगवान के धाम में गए। तो ये निश्चित है कि कोई मरता नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन का विचार करना चाहिए और अगले जीवन का विचार करना चाहिए कि ये जीवन जो है ना किसी प्रकार अब हमको तो प्राप्त हो गया है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त हो गया है, लेकिन अब आगे इससे हमें घाटा नहीं होना चाहिए, है ना? इससे कुछ है और लाभ हो तो अच्छा है। मनुष्य जीवन से अच्छा है क्या? देवताओं का जीवन, स्वर्ग लोग ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर तुलना की जाए वैकुंठ से तो स्वर्ग भी बेकार है, क्योंकि वैकुंठ क्या है? मतलब भगवान का धाम है, अपना असली घर है, और स्वर्ग क्या है? एक जेल खाना है, चाहे प्रथम श्रेणी का जेल खाना क्यों ना हो, लेकिन जेल खाना है। अगर जेल खाने की दृष्टि से देखा जाए तो भाई तीसरी श्रेणी का जेल खाना से अच्छा है दूसरी श्रेणी का जेल खाना या पहली श्रेणी का जेल खाना। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जेल खाना तो जेल खाना ही है, प्रथम श्रेणी का भी जेल खाना कोई नहीं चाहता। क्या आप चाहते हो कि आपको प्रथम श्रेणी के जेल खाने में रखा जाए?
कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता,
नहीं चाहता। तो हमें बंधन ही चाहिए किसी प्रकार से।
अब इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो, परंतु अर्जुन का अभी भी निश्चय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहली बात कही है कि यदि मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, तो ये तो ठीक है। यदि अर्जुन मरेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वे स्वर्ग जाएंगे। कोई पापी व्यक्ति स्वर्ग में तो नहीं जा सकता है, तो ये बात तो ठीक है। परंतु दूसरी बात जो भगवान ने कही है कि यदि नहीं मरोगे तो जीतोगे और पृथ्वी का भोग करोगे, तो इसमें तो पाप लग सकता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि यदि जीतेंगे तो पृथ्वी का भोग प्राप्त होगा, परंतु फिर तो जरूर कुल की हत्या का दोष लगेगा। हाँ जरूर, यदि अर्जुन पृथ्वी को भोगने के लिए युद्ध करेंगे तो कुल की हत्या का दोष जरूर लगेगा। इसलिए अब अगले श्लोक में भगवान गीता की अगली शिक्षा देंगे कि कैसे तथा किस भावना से युद्ध किया जाए जिससे किसी भी प्रकार का पाप ना लगे। और अब आगे की जो शिक्षा है वो गीता की असली शिक्षा है कि इंद्रिय तृप्ति का विचार सदा के लिए त्यागा जाए तथा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर्म किया जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा के श्री गौंडताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। 4 मार्च 1974 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया और कहा कि अपने जीवन को कृष्ण के प्रति समर्पित करो, यही पूर्णता है। चाहे कुछ त्रुटियां क्यों ना हो, परंतु समर्पित जीवन ही अच्छा जीवन है। हो सकता है कि आपकी जो पुरानी आदतें हैं उनमें कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, परंतु फिर भी जो समर्पित जीवन है वही दिव्य है। 5 मार्च 1975 को प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में प्रवचन दिया और कहा कि भगवान का एक नाम अजित है। आ का अर्थ है नहीं और जित का मतलब है जीते गए। कोई भगवान को जीत नहीं सकता है, वे सबको जीतते हैं, परंतु भक्त जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजित हैं, वे पराजित हो जाते हैं अपने भक्त के द्वारा। 6 मार्च 1969 को प्रभुपाद ने राय राम को पत्र लिखा और उसमें कहा कि अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखो और कृष्ण के लिए खूब परिश्रम करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है।
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
राम हरे 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 राम।
हरे राम 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 हरे हरे
जय हो जय हो
राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण